शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम राम राम राम। बोलो महाराज।
हाँ दर्शन हुआ बिल्कुल ऐसी बात। दर्शन होने पर जो भगवान जिसके लिए प्रगट वो दर्शन देते हैं उनमें एक विलक्षण बात ये होती है, उसको फिर अपना उद्योग करने की ऊपर जिम्मेदारी नहीं रहती, उसका उद्धार हो जाता है। वो चाहे मुंह तत्काल नष्ट हो चाहे समय पर हो, उसका उद्धार हो जाता है। ये बात जैसी उत्कंठा होती है ठीक है, तो तत्काल मोह नष्ट हो जाता है। मानो तत्काल भी मोह नष्ट हो सकता है और समय उसका अपरिचय हो या तो समय पाकर हो सकता है, पर उनका काम हो गया उसके लिए बाकी नहीं रहेगा। ये बात उद्धार उसका होगा ही, जिसके लिए भगवान प्रकट हो यार भगवान कह दे उसको उद्धार। कल जो बात बताई उसमें साफ सीधी सरल बात है, जैसे मैं हूं अपने होनापन में कोई संदेह नहीं है ना, उसमें मैंपन प्रकृति का है, हूं पन ये परमात्मा का है। तो मैंपन को छोड़कर हूं पन में अच्छे व्यवस्थित हो जाए, यही बात है। कल ये प्रश्न था कि वो सर्वथा चुप रहना क्या है, ये मूल बात थी। तो चुप रहना है वो स्वयं चुप ही है, एक चेष्टा होती है प्रकृति के कार्य जो मन बुद्धि इंद्रिय आदि की इनमें होती है, शरीर में होती है, स्थूल सूक्ष्म कारण में है, जिसमें कारण में स्थिरता है इनमें चंचलता है। तो स्थिरता और चंचलता दोनों जिसमें प्रकाशित होते हैं उसमें न स्थिरता है न चंचलता है, वो है जो का क्यों है। स्थिरता है चंचलता है ये सापेक्ष है, स्थिरता की अपेक्षा चंचलता, चंचलता की अपेक्षा स्थिरता है, और तत्व तो निरपेक्ष है। हाँ जी, तो उसमें प्रवेश हो जाएगा, चुप रहने से स्वरूप में स्थिति है वो हो जाए, स्वरूप में स्थिति हो जाएगी सत्य, क्योंकि वो है उसमें वो होगा नहीं, पैदा नहीं होता। अभी हम लोगों की जची हुई बात ये है कि जैसे संसार की वस्तुओं को हम प्राप्त करते हैं जा करके ला करके बना करके परिवर्तन करके किसी तरह से, ऐसे ऐसी बात नहीं है, वो स्वतः सिद्ध वैसा है। इसका त्याग करके उसकी स्थिति है जो तो मिलेगी। संसार का संबंध है इससे उसकी प्राप्ति होने के होते हुए भी उस तरफ दृष्टि नहीं है, अप्राप्ति हुआ हुआ है। अब इंद्र से दृष्टि हटेगी तो स्वरूप स्थिति स्वतः सिद्ध पाओगे, वो कोई होगा नहीं। ये बात खास है नी, वो तो स्वतः सब में है, सबकी है, स्वतः है। अब इस प्रकृति के साथ संबंध है, इससे रहित होना है, ये चुप होना है। तो कुछ न कुछ करोगे तो बिना प्रकृति के संबंध कुछ होता नहीं। क्रिया और पदार्थ रूप से प्रकृति है, प्रकृति है क्रिया रूप से पदार्थ रूप से। यदा ही इंद्रिया से सु न कर्म सु अनुसज्जते, स सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ योगारूढ़ हो गया। समत्व योग उचते, समता है वो योग है। सम क्या है कि यही तैर्जत सर्वो ये शाम साम्य स्थित मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म से सीधा समता होगी। तो उसके ब्रह्म से मन में समता होगी, अंतकरण में समता होगी, बुद्धि में समता हो गई तो उसकी स्थिति परमात्मा में है। ये बताया ये सांग सामने सितंग मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म जेषिता। बुद्धि और मन अस्थिर हो गए तो उसकी स्थिति ब्रह्म में हो गई। स्थिति है उसकी तो वो हो नहीं जाती, वो है पहले से सबकी स्वतः है। जैसे मैं हूँ इसमें अपने पर में स्थिति में कोई उद्योग करना पड़ता है, अपनी सत्ता के लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्या बताओ, कुछ नहीं करना पड़ता है। तो वो अपना जो स्वरूप स्थित है उस स्वरूप में स्थित होना है। सम दुख सुख स्वस्थ स्वस्थ है और पूरा प्रकृतिस्थ हो ही मूंगते वो स्वरूप स्थिति है स्वतः। तो ये बात आ जाए समझ में तो इसे समझो, और नहीं तो फिर राम 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 राम। वो जो परमात्मा शब्द के परिपूर्ण है उसका नाम राम है। ऐसे का राम 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 हरदम बैठते उठते खाते पीते सोते जगते हरदम करते हुए राम 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 उसमें ध्यान दो। वो है सब जगह है और संसार नहीं है, ये साथ प्रति रखते हो राम 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 को ये स्थिति हो जाएगी। ये आशा हो जाएगी राम राम करते हुए ये संसार नहीं है और परमात्मा है। क्योंकि वो नहीं है बदलता है ना, प्रत्यक्ष बात है और अपना स्वरूप है ये प्रत्यक्ष है। अब परमात्मा है तो जीवन जाने जीव की जगपति जाने कौन, तो परमात्मा को जीव कैसे जाने, वो स्वयं अपने को नहीं जानता। तो अपना पन तो है स्वतः सिद्ध, ऐसे ही संसार में परमात्मा का स्वतः सिद्धि है। तो राम 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 करता रहे ये नहीं है ये नहीं है वो है परमात्मा है, ऐसे भाव रूप से राम राम करते रहो ये स्थिति स्वतः हो जाएगी। स्वप्न जगमने हरदम इज करे ये राम 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 छूटे नहीं, इसका ख्याल रखे तो इसलिए हो जाएगी। वो तो है किसी नहीं हो रही, नट कितना ही चतुर हो नाचने में बहुत विशेष कला जानता हो तो क्या वो पृथ्वी पर पैर बिना रखे नाचेगा, अपने कंधे पर आप नाच सकता है क्या? पृथ्वी पर तो पग टिकेगा ही, इस तरह से कुछ नहीं करेगा, सब कुछ करेगा तो अंत में टिकेगा तो है वहाँ ही, जहाँ है वहीं टिकेगा। अब दूसरे पर टिका हुआ है कि धन ठीक है, मान ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, महिमा मेरी हो जाए, मेरे को आराम से रहूं, मैं आराम से रहूं, मेरे को आराम मिले, ये चीजें ही विमुख कर रही है। अब इनसे विमुख चाहे ले समझो आप किसी भी चीजें, उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात है सीधी। एक राम 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 रात दिन एक दम लग जाए और ये संसार बदलता है। ये अपना नहीं है, अपना तो फिर है सब में परिपूर्ण है वो अपना है और उसका नाम राम है। राम 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 ये नहीं है, राम जी है वो नहीं है वो है, ऐसा भाव रखते हुए राम 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 करते रहो। कोई सही साधन करो अंत में वो चीज होगी ही, और क्या होगा बताओ, क्यों वो है। संसार में वृत्ति रहने से ही उसे विमुक्ता है, इसको महत्व देने से ही उनसे विमुक्ता हुई है। इसको महत्व नहीं दोगे तो उसमें स्थिति शुद्ध होगी। इस सिद्धांत को तो समझ लो, बात तो चाहे अनुभव हो चाहे न हो, पर इस सिद्धांत तो समझना चाहिए कि वो तो है ऐसे ही, नित्य सिद्ध है। इस वास्ते वो मुक्त होने पर फिर मोह नहीं होता, जो मोह है नहीं वहां हो कैसे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यति पांडव। नारायण और नगर के रज्जव राह अनेक, नगर के भी कई रस्ते होते, कोई पूर्व में से आता है, कोई पश्चिम से आता है, कोई उत्तर दक्षिण आदि से आता है, तो ये रस्ते तो अलग अलग होंगे, परंतु भावे आवो किधर से आ गया स्थल एक, अंत में तो एक ही होगा। सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग ही रिगम्यते, एक सांख्य योग से यह पश्यति सपश्यति। अगर एक मिलेगा, आप इस निर्विकल्पता को कर लो, और चाहे लक्ष्य लोग परमात्मा है, ऐसा राम 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 राम, वो लक्ष्य की तरफ दृष्टि देने से वैसे ही हो जाएगा, वहां पहुंच जाओगे। सत्संग के द्वारा ये समझना चाहिए कि एक तत्व है और वो नित्य प्राप्त है और अपना वही है। ये दिखता है, सुनने में आता है, समझने में आता है, ये अपना नहीं है। ना इनके साथ हम रह सकते ना ये हमारे साथ रह सकते, और परमात्मा को माने तो हमारे साथ है, न माने तो हमारे साथ है, जाने तो हमारे साथ है, न जाने तो हमारे साथ है, स्वीकार करें तो हमारे साथ है, अस्वीकार करें तो हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, ये हमारे है ऐसी बात। उस है उसी को प्राप्त करना है, प्राप्त वही होगा जो नित्य प्राप्त है, वियोग उसी में होता जो वियोग हो रहा है, वियोग है अलग है, उसी से अलग होंगे, अलग जिसने होंगे, जिसने अलग है और अलग अलग हो रहे हैं उससे ही अलग होना है, और प्राप्त उसी को करना है जो प्राप्त है, प्राप्त ही है उसको प्राप्त करना है। अब अलग हो रहा है उसको जो नित्य मानते हैं, पास मानते हैं, इस मान्यता के कारण से जड़ के साथ संबंध है, ये बनाया हुआ है। उसमें शंका होती हो, आप संदेह उठता हो, बोलो
मिलता वही जो मिला हुआ है, दूसरा हुआ है,
बहुत लाभ सार बात है, बहुत सार बात है। अंत में मिलेगा वही जो सदा नित्य निरंतर मिला हुआ है, और हटेगा वही जो हट रहा है, हटा हुआ ही है, और हटा हुआ है नित्य निरंतर हट रहा है। मिलेगा वही जो नित्य निरंतर मिला हुआ है, कभी वो अलग हो नहीं सकता, उनसे आप अलग हो नहीं सकते, उसी की प्राप्ति होगी। कितनी बढ़िया बात है,
उद्योग करके मिलने वाली बात ही नहीं है।
बच नहीं रही। इस बात मैं बार बार कहता हूँ, संसारिक वस्तु जिस तरह से मिलती है, इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। उसकी प्राप्ति का उपाय, उसका जो प्राप्ति रूप, जो प्राप्ति प्राप्ति है, वो और तरह की है, उसका साधन और तरह का है। पर इस तरह से साधन करो तो भी प्राप्ति हो जाएगी, लक्ष्य को और ऐसे, परंतु वो प्राप्ति चीज है वो और तरह की है, ऐसे नहीं है। संसारी वो तो अप्राप्त को प्राप्त करना है और वो नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है। जो तरीके दो हैं, ये मैं कितना ही कहूँ भाई, लोग ना तो इधर ध्यान देते हैं ना ध्यान देना चाहते हैं। ये बात आप थोड़ा ख्याल हुआ उन्हें विचित्रता दिखी नहीं आपको, उन्हें ख्याल होने से विचित्रता ही नहीं विचित्रता। अब इसको मैंने कह दिया है रूप से जो दीज गए सब ले गए वो है, ये संसार नहीं है और है परमात्मा है। बाप मेरे को पूछा तुम क्या मानते हो, मैं तो है और मानता हूँ, मैं तो ये तो नहीं मैं जा रहा, नहीं था और नहीं रहेगा और नहीं मैं तुम जा रहा है, वो था और रहेगा है नहीं रहता है नहीं कभी होता ही नहीं है। ये बात कितनी सार बात है, जितना आप चिंतन करो लोक पर लोक का जितना कुछ, वो पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा और वर्तमान में भी नहीं में ही जा रहा है। जैसे कल मैंने कहा कि जो बाल्यावस्था को आपने छोड़ा है क्या, कोई कह सकता है कि मैंने बाल्यावस्था को छोड़ा है, छूट गई ऐसे मात्र वस्तु छूट रही है आप साहब, छुट्टी क्योंकि आपसे अलग है और निरंतर नष्ट हो रही है। अब उसके साथ आप मान लेते हो, वो पकड़ लेते हो, यही बंधन है, उसको न पकड़ा मुक्ति है स्वतः से, तो बंधन है वो कृति साध्य है और मुक्ति है स्वतः सिद्ध है।
कल प्रत्येक सुनना आया था उसमें कहा कि आपके साधक संजीवनी ने हमने पढ़ाया मुक्ति स्वतः सिद्ध है, हमारे अपना मुक्ति तो उसकी नहीं किया था,
मूर्ति अपने आप हो कैसे आदर्शन का पकड़ा मुझे कैसे स्वतः से, तो वो है होनी चाहिए नहीं है होनी क्या चाहिए,
फिर भी हमारा बंधन है।
अच्छा बंधन है तो बंधन को आप छोड़ते नहीं, वो है मिलेगा कैसे, एक संत के पास एक
छोड़ने से मुक्ति हुई, बात तो ये हुई सिद्ध कहा हुई,
बंधन तो आपने पकड़ा है, बंधन स्वतः सिद्ध नहीं है, बंधन स्वतः सिद्ध नहीं है और वो स्वतः सिद्ध है,
बंधन स्वतः
सिद्ध नहीं है। स्वतः सिद्ध कैसे होगा, आपका जो संबंध है वो स्वतः सिद्ध कैसे है। मैं एक स्थूल से स्थूल बात बताऊं कि जब इस प्राणी का विवाह होता है, विवाह होते हुए जो सीमा आकर्षण है, बूढ़ा हो जाए पोता पोती हो जाए तब वो आकर्षण रहता है क्या, सही कहा है, परंतु अपने मैं रहूं ये कभी मिटता है क्या, स्वयं का आकर्षण नहीं मिटता है और बनावटी आकर्षण टिक सकता नहीं है, नहीं टिक सकता है उसको छोड़ते नहीं, इसलिए स्वतः से मिल नहीं रहा। अब स्वतः से लिखा है ऐसा, अच्छा लिखा तो है तो उसका अर्थ समझो भाई, जो स्वतः सिद्ध नहीं है उसको आप पकड़ो मत, किसी साध्य है आपके द्वारा पकड़ा हुआ है, वो परिश्रम से पकड़ा है। परसों मैंने कहा ना दुख बिना उद्योग के नहीं हो सकता, परिश्रम करके उद्योग करके दुख पैदा करते हैं और सुख स्वतः होगा, स्वतः है होगा नहीं, वो है स्वतः स्वाभाविक शैत्यम यथा प्रकृति जलस्य, जल की ठंडा पड़ने की प्रकृति है, स्वतः ठंडा हो जाएगा, गर्म करना पड़ता है। अब इधर ध्यान नहीं देते हैं, इधर सुनते हैं ना, सुनते हैं ध्यान नहीं देते, ये कहते हैं कहते हैं ये तो तप लागण थी जोर से, क्या बात कही। जैसे आज आपने कहा कि कितनी विशेष बात है, तो क्या है जब ध्यान जाएगा ऐसी विलक्षणता दिखेगी उन्हें प्रत्यक्ष, क्यों ये तो वर्षी भी है। जैसे एक आया दहरू के आया दुकानदार, वो आगे वो सिपाही बन कर आज घर ठीक हो गया, और ये कहता है कि बाहर दसों कहते हैं कि ऐसे फैला रखी है कि सड़क तुम्हारी है, लाओ क्या नाम है तुम्हारा, नाम लिखे नाम नहीं नहीं अभी ठीक कर लीजिए, नहीं नहीं तुम करते नहीं हो, अब तुम्हारे को ठीक करेंगे, लिखने लगा गर्व करने लगा, अरे वो घबरा गया तो बोलू भी हंस गया, अब बोलो उस बहु रूपये तो मिला हुआ ही था, ही बहु रूपया था ही पैरल से पीछे पूछ रहे बहु रूपया है, अब भय रहा गया अप्राप्ति प्राप्ति हुई है। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति हुई, इस वास्ते अर्जुन ने कहा नष्ट हो मोह स्मृति लब्ध, मोह नष्ट हो गया स्मृति प्राप्त हो, लब्धा और स्मृति दोनों स्वरूप पूर्व सिद्ध को सिद्ध करते हैं, तो नित्य प्राप्ति है सत्व, परंतु वो लिखने वाले को गलती मानेगा कहां प्राप्त हो रही है बात, गलती है बात तो ठीक है, ये ठीक नहीं लिखा, मैंने वर्णमाला पढ़ ली तो मेरे सामने पूछ के संस्कृत हिंदी की थी, अंग्रेजी की उर्दू की कोई लिखी नहीं थी, तो मैंने कहा पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब गलती यही है कि ये दो दो अक्षर मिला देते हैं ना, ये गलती करी लिखने में, नहीं तो हम पढ़ लेते कि नहीं, अक्षर भी तो वही है, तो गलती उनकी है जिन्होंने मिला दिया उसको, हमारे लिए हम तो पंडित पूरे हैं, ऐसे लोग समझते हैं कि ये बात कैसे है, उसको कैसे भी कहाँ है गलती है क्या, सत्य सिद्ध तो मिल जाए, मिले नहीं तो कहाँ सत्य सिद्ध, उद्योग करें तो होगा, अब कैसे बैठे बताओ, मैं अपनी दृष्टि से खूब ठीक कहता हूँ, और मैं चेष्टा भी करता हूँ उद्योग करता हूँ, परंतु पेश नहीं आ रहा, ये अगर विचार कर ले ये कहता है तो कोई कुछ ठीक कहता है तो मेरे पीछे पड़ जाए आदमी, अगर जिज्ञास वो ठीक करे से तो पीछे ही पड़ जाएगा, ये बात कैसे है, पर उस विश्वास हो तो क्या बैठे ये कथा करते हैं, ये क्वेश्चन सुनते मुफ्त में चीज मिलती और पता लग जाए तो वे छोड़े आदमी, सबसे ऊपर चीज है, उससे बढ़कर कोई चीज हुई नहीं है नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं चाहूंगा, इससे पहले बढ़कर कोई थी नहीं, अब ऐसे बढ़कर कोई है नहीं, इससे बढ़कर कोई होगी नहीं और इससे बढ़कर कोई हो सकती नहीं, सामर्थ्य नहीं, अब ये मन में आ जाए तो आदमी छोड़े, ये विश्वास हो जाए तो भाई सबसे पहले यही करना है, चाहे मर जाओ बोले करना ही, अब पीछे पड़ जाए तो वो तो प्राप्त है ही, वही क्या है, जितनी उत्कंठा होगी उतने उससे निवृत्ति हो जाती है संसार से, इसको उत्कंठा जितनी जोरदार जगेगी उतनी संसार निवृत्ति करनी नहीं पड़ेगी, आप नींद लेने में परिश्रम करना पड़ता है क्या, क्या व्यायाम करना पड़ता है, उद्योग करना पड़ता है, क्या पसीना आता है, नींद लेनी दूर नहीं करना है, कोई आप नींद आ जा, ऐसे अपने आप स्थिति हो जाओ, नहीं तो अविद्या है वो तो घर में रहती नहीं, और वो विद्या है कोई मिटती नहीं, कोई फर्क पड़ता ही नहीं, स्वतः सिद्ध तत्व है। नारायण 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 जैसे हरदम मृत्यु की तरफ जा रहा है, संसार मात्र अभाव की तरफ जा रहा है, परंतु मनुष्य के बात बैठी हुई कि हम जी रहे हैं, ये जैसे उल्टी बात बैठी है ना, ऐसे ही पढ़ने लिखने अभ्यास करने वाले समझते हैं कि पारमार्थिक ठीक समझती है, व्यवहार तो नहीं होता और व्यवहार में सब नहीं है, व्यवहार है ये तो सब तरह करना ही पड़ता है, व्यवहार तो सही रहेगा, ठीक ऐसी बात। वास्तव में व्यवहार ही शुद्ध करना है, परमार्थ बिगड़ा है ही नहीं, परमार्थ तत्व तो क्यों का क्यों है, सुधारना है तो व्यवहार ही सुधारना है, आपस में जो व्यवहार है इसको शुद्ध और निर्मल करना है, यह निर्मल होगा तो परमात्म तत्व तो प्राप्त है, उसको बनाना नहीं। और बहुत से मेहनत करते हैं तो पढ़ते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, उनको करते हैं, व्यवहार व्यवहार तो होता है, व्यवहार में तो करना पड़ता है, उसको छूट दे रखिए, झूठ कपट भी हो जाए, जबरदस्ती भी हो जाए, कोई बात नहीं, व्यवहार है तो करें।
कल एक पत्र आया था, हाँ। उसमें लिखा था कि वेदांत के बहुत ऊंचे ग्रंथ में भी ये बात आई है कि पाप तो प्रारब्ध से होता है, कैसे क्या करें, कभी कोई पाप भी हो जाए,
हाँ।
तो वो प्रारब्ध से हो सकता है, ऐसा वेदांत के ऊंचे से ऊंचे ग्रंथ का नाम लिया, उनकी नाम नहीं लेते, ग्रंथ का नाम भी लिया, ऐसा
दिखा
क्या करें, आपकी
बातें
तो और
ढंग से बात बिल्कुल है, वो ग्रंथ मेरे पढ़े हुए हैं, वे ग्रंथ भी मेरे पढ़े हुए, वो किस ग्रंथ के लिए की पता नहीं, हाँ तो वो उसमें मेरे पढ़ा हुआ है, वो मैंने पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, अच्छा ग्रंथ है।
आप
बात है नहीं भाई, देखो वेदांत के ऊंचे ऊंचे ग्रंथों में भी ये बात लिखी है कि किसी से पाप हो जाता है तो वो प्रारब्ध के कारण हो जाता है, ऐसे ऊंचे ऊंचे ग्रंथों में ये लिखा हुआ, और मेरे पति कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं कहते हो, तुम ऐसे इस बात का एक तरह विरोध करते हो, तो भाई हम कहते हैं प्रारब्ध से पाप नहीं होते। अब आपको बात बताऊं, ये बात हमारे से पूछा करो खूब अच्छी तरह से, जो ग्रंथ मेरे पढ़े हुए मैं जानता हूं, अब और भी बातें आती होगी, कई बातें और आती, प्रारब्ध और पुरुषार्थ दो है, अब ये जो काम करते हैं ये नया पुरुषार्थ क्रियमान कर्म और पुरुषार्थ कहलाता है, और भोग भोगते हैं वो प्रारब्ध है, प्रारब्ध कर्म कर्म नहीं करवाता, सिद्धांत है सदा के लिए याद करो, टिकेगा नहीं, ये प्राप्त लिखा है कि प्राप्त होता है स्वेच्छा अनिच्छा परीक्षा से। तो स्वेच्छा अनिच्छा पर्यार्थ से होता है, काम होता है। तो वहां प्रमाण दिया है गीता का, जहां प्रार्थ से पाप हो जाते हैं वहां प्रमाण गीता का दिया है, वहां ग्रंथ में अनिच्छन्न विवार्षे बला देवी अनिच्छन्न। तो ये अनिच्छा प्रार्थ है उससे पाप होते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। प्रावध का फल भोग होता है, कर्म होते हैं वो प्रावध से होंगे। तो ध्यान देकर आप सुनो, एक बार प्रावध हो पाप हो गया, अब वो पाप छूटेगा नहीं, क्योंकि उस पाप के फिर पाप करेगा, पाप का फिर पाप करेगा, पाप का फिर पाप करेगा, तो पाप छूटेगा ही नहीं कभी। पाप का पाप कर्म फल नहीं होता, पाप का दुख रूपी फल होता है। उस दुख रूपी फल में भी आधा है, दुखदायी परिस्थिति हो जाना प्रारब्ध का फल है, परंतु उससे दुखी होना ये मूर्खता का फल है। कर्मों का फल भोग है ये कहते हैं। तो फल भोग क्या है उसमें ये बात बहुत कम जगह मिलेगी, मेरे को कम जगह मिली है मेरे को, इस बात से कह रहा हूं, और जगह आपको मिलती होगा। प्रारब्ध परिस्थिति सामने लाकर रखे रहेगा, अब सुखी होना और दुखी होना इसमें आप स्वतंत्र हो, पराधीन नहीं हो। परिस्थिति में आप प्रतंत्र हो, प्रतंत्र स्वतंत्र नहीं हो। परिस्थिति बदलने की मनुष्य चेष्टा करता है, परिस्थिति के उपयोग की चेष्टा नहीं करता, ये बड़ी भारी भूल है। परिस्थिति बदली नहीं जा सकती, अब सदुपयोग किया जा सकता है सुगमतापूर्वक। तो परिस्थिति तो आ जाएगी दुखदायी, पर उसके कारण से दुख होगा ये बात नहीं है। नाग जी महाराज छोटे से ही थे, उस समय माँ मर गई। अब बालक की माँ मर जाए इसके समान दुख क्या होता है बताओ? बालक की तो सब कुछ माँ ही है, उसके जो घर बार जो कुछ पालन पोषण करें तो माँ है। अब छोटी है, समय माँ मर जाए तो इसके समान कोई दुख नहीं है। परंतु पार्वती राजी हुए, नारद जी महाराज नाचने लग गए, माँ मर गई, माँ को सांप काट गया और माँ मर्गी राजी हो गई, बंधन मच गया। अब कैसे आ जा भोजन कर ले, तुम कहीं कर देगा, अब सो जा, अब ये कर ले। निकल गए घर से, जंगल में चले गए, झरने का पानी पीकर वृक्ष नीचे बैठ गए और भगवान की कृपा पर चिंतन करने लगे। चिंतन करने लगे तो समाधि लगी, जो मन लग गया एकदम, मन लग गया थोड़ी देर लगा, बाद में फिर मन नहीं रहा वैसा, उसके लिए व्याकुल हुए, पुकारे तो आकाशवाणी हुई कि तेरे अभी कर्म बाकी है, तो अभी ऐसा नहीं होगा। दुर्दर्शो हम कुयोगी नाम लिखा हुआ, कुयोगियों के लिए मैं दुर्दर्शन दर्शन नहीं देता हूँ, फिर जन्म होगा फिर दर्शन होगा। तो व्याकुल हो गए। तो बात तो ये कहनी थी कि माँ का मरना ये प्रारब्ध कर्म का फल है, परंतु दुखी होना सुखी होना ये मूर्खता का फल है। बालक की माँ मर जाए दुखी न होए, और प्रारब्ध का फल है सुख सुविधा मिल जाना, अनुकूल परिस्थिति हो जाना, पर उसमें राजी होना मूर्खता का फल है। ये प्रारब्ध का फल नहीं है, ये है ही नहीं बिल्कुल। इसमें जो शंकाएं हो आप लिख लाओ और एकांत तो पूछो मेरे से, कभी नहीं हो सकता ही। नहीं तो पाप का फल, पाप का फल, पाप पाप का फल, पाप पाप का फल, चलते ही करो अनवस्था होगी, फिर पाप का अंत होगा ही नहीं। पाप का फल प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, ये है। ऐसे ही उस ग्रंथ में लिखा है, एक वैराग्य होता है, एक उपरति होता है, एक बोध होता है। वैराग्य और उपरति प्राय साहचर्यते साथ प्राय करके साथ रहते हैं, परंतु वियोग जनते कुचित बोलते कहीं कहीं यहाँ वियोग हो जाता है, उसमें वैराग्य नहीं हुआ उपरति होगी बोध हो गया, बोध नहीं हुआ अरे उपरति वैराग्य हो गया, तो उपरति वैराग्य हो गया बोध नहीं हुआ है तो उसका ब्रह्म लोक स्तपोमरात उस वैराग्य उपरति से ब्रह्म लोक की प्राप्ति हो जाने मुक्ति नहीं होगी, परंतु तत्व ज्ञान हो गया और वैराग्य उपरति नहीं हुई तो विश्व दुख न नश्यति, विश्व दुख नष्ट नहीं होता मुक्ति हो जाएगी। ये बात बिल्कुल गलत है, वैराग्य उपरति होने की बोध हो जाए वो बातूनी ज्ञान होगा पुस्तकी ज्ञान होगा पुस्तक कोई फल नहीं होता, एक एक दुए दो याद हो जो है याद बेदान पुस्तक जैसे वैराग्य नहीं उपरति नहीं और बोध हो जाए कोई तमाशा नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं गलत आया। तो ये बात है नहीं, बिना वैराग्य हुए कैसे होगा, तो वैराग्य होने से संसार की चीजों में राग नहीं हो, ये हो सकता है गृहस्थ आश्रम में रहते भी हो जाए साधु आश्रम में जाकर भी हो जाए, तो आश्रम कोई बाधक नहीं है, परंतु पदार्थों में राग है महत्व बुद्धि है, भोगों में महत्व बुद्धि है, संग्रह में रुपयों में महत्व बुद्धि है, मान बजाई आरंभ में महत्व बुद्धि है, बोध नहीं होगा, बातों में पंडित हो सकता है व्याख्यान दे सकता है पुस्तक लिख सकता है संस्कृत पुस्तक लिख सकता है हिंदी में लिख सकता है पुस्तक पढ़ा सकता है व्याख्यान दे सकता है मुक्ति नहीं हो, पढ़े अपढ़े सारे के जो आत्म नहीं लख सिल साली चित्रित अखा दोनों डूबण पक, पत्थर ले आओ पहाड़ में से तो वो अनघर पत्थर अच्छा नहीं लगता, और एक पत्थर को घर करके खूब देर बूंदा तो मूर्ति बना दो तो सभा में अच्छा लगेगा, मगर डूबने में कोई फर्क नहीं, पढ़ा लिखा वो घड़ा हुआ पत्थर है और अपढ़ है वो अनघड़ पत्थर है, पर डूबने में कोई फर्क नहीं, डूबने क्या फर्क होगा, सुंदर घड़ा हुआ नहीं डूबेगा, ऐसे बहुत पढ़ लेगा वो डूब जाएगा और अपढ़ है वो डूब जाएगा, इनमें कोई फर्क नहीं है, ग्रंथों को जितने पढ़ाया है ना ये वेदांत ग्रंथ मेरे पढ़े हुए, मैंने वेदांत की पढ़ाई करी है परीक्षा भी दी है तो मेरे दिल हुए पढ़े हुए हैं पढ़ाए हुए हैं सीख लो विद्या बढ़ाएंगे, हमारी श्रद्धा नहीं है, साधन करो उसका कल्याण होगा उद्धार होगा इसमें संदेह नहीं है, तो व्यवहार में कोई फर्क नहीं, ये बात गलत है, व्यवहार में फर्क पड़ेगा, जो पारमार्थिक रास्ते में ठीक चलेगा तो उसका व्यवहार शुद्ध होगा निर्मल होगा, तो व्यवहार को शुद्ध बनाना है, यानी व्यवहार में तो रहता रहे विवेश, अब कह देने की पाप भी हो जाएगा, ज्ञानी के द्वारा प्राउड होता है प्राउड के कारण से हो जाता है राजदार रहता है उसको लिखा मानो राज की स्त्री के साथ कोई लग गया तो उसको दंड होगा ये दुख होता है भय भी लगता है, पर प्राप्त के कारण से व्यवचार करता है पाप हो जाता प्राप्त से बिल्कुल गलत ऐसा नहीं हो सकता, प्रारब्ध है वो कर्म फल भोगाना है, कर्मान कर्म करना है और प्रारब्ध एक फल है, प्रारब्ध कर्म नहीं है फल भोग होगा फल, और फल भोग भी आधा, परिस्थिति ऐसी आ जाएगी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी, मन सुखी और दुखी होना ये बिल्कुल मूर्खता का फल है, और मूर्खता चली गई तत्व ज्ञान हो गया कितना ही दुख आ जाए संताप आ जाए भीतर में संताप हो ही नहीं सकता, मेरे को ये धारणा है कि बुखार आ जाए 3-4 डिग्री बुखार हो जाए सिर दर्द हो जाए ये हो सकता है, मैं हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा मस्ती में आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
कोई फर्क नहीं पड़ता। बिच्छू काट जाए दर्द होगा और उसके वो लहरा चलेगी रूंबा चढ़ेगा उसको दर्द होगा, परंतु भीतर हमारे में मस्त रहेगा, आनंद रहेगा, खुशी रहेगी। बुखार आने से आनंद आता है, आनंद आनंद खुशी आती है, प्रसन्नता होती है, चित्राजी होता है। दुखदायी परिस्थिति में गुल खेलता है, मस्त हो जाता है, आनंद हो जाता है। बुखार आए और कोई पानी पूछने वाला न हो, सिर दबाने वाला भी नहीं हो, जल्दी पूछने वाला कोई न हो, तो एक विशेष आनंद आता है, विशेष मौज होती है, कोई पास में न हो, ऐसी मस्ती आती। दुखदायी परिस्थिति में प्रसन्नता होती है, आनंद आता है, सुख होता है। उपरी की होती है सुख होते ही नहीं, आनंद तो उसका आता है, प्रतिकूल परिस्थिति आई है इस वास्ते आनंद आता है। किसी कर्जदार का कर्जा उतरे तो दुखी होता है, सुखी होता है, ईमानदार आदमी, बेईमान के नहीं कहता। ईमानदार आदमी का कर्जा दूर हो में खुशी होती है कि नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति में पापों का नाश होता है, कर्जा उतरता है, शुद्धि हो रही है, निर्मलता हो रही है, खुशी आ रही। उसके सिवाय भी खुशी होती है, पाप मस्त होते ये खुशी है, इनकी सिवाय दूसरी खुशी होती है, मस्ती आती है। जैसे कांटा निकालते हैं ना, तो कांटा निकालते हुए जब गहरा कांटा है तो उसको सुई लगाते हैं तो वो मांस में जाती तो बुरी लगती है, ये संस्कार करते हैं छोड़ देना ना, निकाल निकालो। तो देखो बुरी लगते हुए भी सुई सुहाती है कि निकालो, कांटा निकल गया तो कांटे निकालने में सुई बुरी लगती है पर वो निकालो। इस वजह से बुखार बुरा लगने पर भी आनंद होता है, कांटा निकल रहा है बहुत बढ़िया हो रहा काम। इसके सिवा भी एक आनंद आता है, एक विलक्षणता आती है, बीमारी में बड़ा एक आनंद होता है, बड़ी मौज होती है। ये बात एकदम सच्ची है, ये बनावटी नहीं है एकदम। दुख नहीं हो सकता, दुख राग से होता है, आसक्ति है, राग है, कामना है, ये भीतर से दुख होता है। ये पापों की और दुखों की ये जड़ है, राग है संसार में, पदार्थों में, भोगों में, मान बढ़ाई में, रुपये पैसों में, आदर सत्कार में, इनमें जो राग है ये रागो लिंग मबोध है, ये अबोध का लिंग है, मन इसका चिन्ह है, पहचान है। रागो लिंग मबोध है से चित्त व्यायाम भूमि को कुत साधुरता से ये त्यागनी कोटरे करो, जिस वृक्ष के कोटर में आग लगा दे, छाना भर लकड़ा लग दे आग लगा दे, फिर जैसे वृक्ष हरा तो नहीं हुआ है, अरे गिर पड़ेगा तो जाएगा पेड़ जल जाएगा, अब हरिया होगा वृक्ष। ऐसे जिसके भीतर में राग पड़ा है उसको शांति मिलेगी कभी नहीं, कभी नहीं। भीतर में राग रहेगा तो बंधन है, रागो दिन हम अब राग द्वेष होते हैं ये नहीं रहते। इस विषय में अच्छे अच्छे विद्वानों की ये बात है, ग्रंथों की और पढ़े लिखे की बात है, राग द्वेष है ये प्रार्थ का फल है, ये रहेंगे बिल्कुल नहीं। और उसमें प्रमाण देते हैं इंद्रिय इंद्रिय फिर राग द्वेष हो व्यवस्थित हो, ये व्यवस्थित है जरूर होने वाले हैं, व्यवस्था से स्थित होने वाले हैं। व्यवस्थित का अर्थ नहीं है व्यवस्थित है तो होंगे ही राग द्वेष, ये अर्थ नहीं है। इंद्रिय इंद्रिय फिर राग द्वेष हो व्यवस्थित हो, अनुकूलता प्रतिकूलता की व्यवस्था में स्थित है, अनुकूलता से राग होता है, प्रतिकूलता से द्वेष होता है, तो व्यवस्थित यूं है अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा व्यवस्थित है, आवश्यक होंगे ये नहीं। इंद्रिय इंद्रिय की अर्थ राग द्वेष हो व्यवस्थित है, और न वश में आगत से ये मनुष्य का पुरुषार्थ है, न राग के वशीभूत हो न द्वेष के वशीभूत हो। अगर ये व्यवस्थित होंगे ही तय और न वश में आगत से क्या करेगा, बस में कैसे नहीं होगा, इधर जबरदस्ती होंगे तो भस्म होगा, ये होना ही पड़ेगा। तो गीता कहती है न भस्म आ गया, क्यों तो जैसे परिपन थे ना, इसके शत्रु यही है राग और द्वेष, राग और द्वेष ये है शत्रु। विलक्षण बात है, एक और विलक्षण बात बताना आपको। आप इस तरफ ध्यान दो इस वास्ते एक बात बताते हैं, मन में आ गई। आज की बात हूं, आज सुबह कुछ नित्य कर्म कर रहा था मैं, उससे मन में आई कि गीता ने कहा है आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योगिन, सुखम वा दुखम सहयोगी परमो मत। इस श्लोक पर आई बात याद, वो ऐसी बात है जो आज दिन तक आई नहीं, मैंने लिखी नहीं है, श्लोक की टीका में आई नहीं है, कोई टीका में मैंने देखी नहीं है, अपने भी लिखी नहीं है, और इस तरह का विवेचन मैंने किया नहीं है पहले, आज करता हूं। मैं कहता हूं रोजाना मेरे को गीता में विलक्षण विलक्षण बातें मिलती है, वो मिली हुई बात कहता हूं। आत्मोपमेन सर्वत्र, शरीर की उपमा दी, जैसे शरीर है इसकी अनुकूलता चाहते हैं प्रतिकूलता नहीं चाहते, और मैंने ये बात कही है कि जिन अविवेकी पुरुष शरीर ही लखनलाल जी सीताराम जी की सेवा करते हैं, जैसे अज्ञानी पुरुष शरीर की सेवा करे, तो शरीर के साथ में कभी द्वेष नहीं होता। भीतर से शरीर असुहावना नहीं लगता, शरीर की क्रिया कोई बुरी नहीं लगती, शरीर अच्छा लगता है। थोड़ी सी ध्यान देकर सुने मेरी जो बात, मार में बताता हूं। शरीर को साफ करते हुए टट्टी भी हाथ में लग जाए तो ग्लानी नहीं आती, वही टट्टी गली में पड़ी है हाथ के लगा कर देखो, फर्क होता है कि नहीं? सुनने में गड़बड़ी लगती है, गली रे मरवा पड़ा हाथ लगाते हो, और एक अपने साफ तटी साफ करते हो हाथ के मिलने लग जाए तो ना फर्क है, बरोबर रहता है। ध्यान नहीं देते तो बरूबर बैठी नहीं, गुरु भाव एक अनुभाव बुझता का ब्यौरा नहीं, नगरी में न्याय रोई भले राजी बात अलग, मन ध्यान देगा तो मेरे फर्क प्रत्यक्ष मालूम रहेगा। क्या कारण? वो मेला मेरा है, इस बात बुरा नहीं लगता। गली में मेला किसका है पता नहीं, यह बुरा लगता है। इन माइयों को पूछो, पूछ रहे मुंह तो पीड़ा भी पानी है। तो त्रिवेणी जाओ ही मत, पूछ रहे मुंह है तो क्या है, मुंह है ऐसा, दूसरे का मुंह बुरा लगता है, पूछ का मुंह भी बुरा नहीं लगता, ममता है। तो आत्मोपमेय न कैसा होना चाहिए, अब साफ खुलासा करता हूं, बात तो मैंने कह दी है, फिर खुलासा करता हूं कि जैसे अपने शरीर में द्वेष नहीं होता, शरीर बीमार होने पर भी शरीर बुरा नहीं लगता, बीमारी बुरी लगती है शरीर बुरा नहीं लगता, ऐसे अपने साथ बैर रखने वाला भी अगर बैर करता है तो बैर करना तो बुरा लगे, पर वो आदमी बुरा नहीं लगना चाहिए। क्यों? शरीर बीमार है तो अच्छा थोड़ा ही है, ये तत्ती फिरता है तो अच्छा थोड़ा ही है, पर शरीर बुरा नहीं लगता है, ऐसे हमारा जी हमारे साथ बुरा करे, हमारे साथ बैर रखे, हमारा नुकसान कर दे, तो उस व्यक्ति के प्रति अपनी भावना दूषित नहीं होनी चाहिए। जैसे शरीर प्रतिकूल होने पर भी शरीर बुरा नहीं लगता, ऐसे उसके प्रति बुराई उस व्यक्ति के प्रति नहीं होना चाहिए। ऐसे अपना प्यारा भाई है, रोग हो गया तो रोग दूर करेंगे, रोग के साथ द्वेष होगा पर उस व्यक्ति के साथ द्वेष नहीं होगा। ऐसे हमारा कोई बुरा करे तो बुराई करने वाले के साथ में द्वेष भावना किंचित मात्र नहीं होनी चाहिए। यही भाव कि इसका सुधार कैसे हो, इसका भला कैसे हो, इसका कल्याण कैसे हो, यही रहता है। कितने सही बीमार हो जाए ये ठीक कैसे हो, यही रहता है। शरीर बुरा है ऐसा नहीं होता। ये आत्मोपमनीय सर्वत्र समम पश्चिद योजना सुखम वीवा दुखम सुख सुख हो ऐसा होती है। दूसरे के दुख से दुखी, पर सुख से सुखी। परसों मेरे बात आई थी मन में, पराये दुख से दुखी होने वाले को अपने दुख से दुखी होना नहीं पड़ता। पराये दुख से दुखी नहीं होते हैं उसको अपने दुख से दुखी होना पड़ेगा। पर दूसरे के दुख से दुखी होता है वो अपने दुख से दुखी होना नहीं पड़ेगा। ये बात मेरी पढ़ी हुई भी है, कुछ समझी भी है, परंतु एक बात और कहता हूं मैं। पूरी बात है कि दूसरे के भले होने में बाधा लगने से अपने को दुख होना चाहिए। दूसरे का कल्याण नहीं हो रहा है, कल्याण बाधा है, इससे दुख होना चाहिए। तो अब दूसरे के कल्याण होने से सुख और कल्याण न होने से दुख होगा, उसको अपने कल्याण न होने में दुख नहीं होगा, मनुष्य कल्याण हो ही जाएगा। इस रूप से विवेचन किया याद नहीं है मेरे को, दूसरे के दुख से दुखी होना वाला अपने दुख से दुखी नहीं होना, ये विवेचन किया हुआ है, मेरी बात कही हुई है। हमारे भाई बहन ध्यान कम देते हैं, दूसरे के उद्धार में दूसरे के कल्याण में बाधा पड़ती है, उस बाधा से जिसको दुख होता है वो अपने कल्याण में बाधा उसके नहीं होगी। जैसे दूसरे के दुख से दुखी होने वाले को अपने दुख से दुखी नहीं होना पड़ेगा, ऐसे दूसरे के कल्याण न होने में दुख होता है उसे कल्याण न होने का दुख भोगना नहीं पड़ेगा, अर्थात उसका कल्याण हो ही जाएगा। संतों के लक्षणों में पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दुख दुख और सुख सुख देखे पर दूसरे के सुख से सुखी, ऐसे दूसरों के कल्याण से प्रसन्नता होती है, दूसरे कल्याण में बाधा लगती है इससे दुख होता है। ये दुख कोई भाग्यशाली होता है, अरे को नहीं होता है। अरे वो क्या बता इस बात का, पराये दुख से भी दुखी नहीं होता तो पराये कल्याण न होने से दुख कैसे होगा। सर्वभूत हित रहता मात्र प्राणी के हित में जिसकी प्रीति है उसके इस बात का दुख होगा। महान अनिष्ट की बात है पर इस बात को कौन समझे, जब भी अकल नहीं है अभी बात। दूसरे कल्याण में सुखी होते यहां तक तो होती है, पर उनके कल्याण बाधा पड़े उनसे दुख होता है ये बहुत कम होता है। बात एक ही है, दूसरे के हित से हित होते हैं, दूसरे के कल्याण से प्रसन्न होते हैं तो अकल्याण से दुखी हो ही, लाभ से सुख होता है तो हानि से दुख होगा ही, परंतु ये कम होता
है।
सुना भी नहीं, पैदा किया मैंने, जान विवेचन मैंने भी नहीं किया। और ये जो पहले कही तो आत्मा पर भी है ना, ये टीका में भी नहीं लिखा है, ऐसा विवेचन नहीं किया है, तो आज ही मन में आई। मैं कहता हूँ गीता में मेरे को नए नए अर्थ मिलते हैं, नया है कि नहीं। आत्मोपमनीयन कहते हो तो अपने शरीर की उपमा देकर बताया तो अपने शरीर कितना ही खराब हो जाए तो भी शरीर की हम निंदा नहीं करते, ऐसे कर देते हैं, परंतु भीतर से शरीर से उपृति नहीं होती, शरीर के दुख से उपृति होती है। दुख से बैराग होता है, कोई स्त्री अनुकूल नहीं है, पुत्र अनुकूल नहीं है, चाहे तो साधु हो जाए कुछ काम में, इसमें बड़ा घर में बड़ा दुख है, झंझट है, वो बैराग नहीं है, दुख से बैराग है। वो दुख मिट जाए तो बैराग जय राम जी ठंडा हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। दुख से बैराग हो तो कुत्ते को बैराग है, लाठी से लाठी लेकर भाग जाएगा वो, क्योंकि लाठी खाने से बैराग है उसको, अब भी गिराग है इसमें। ये बात मेरा तो व्यवहार शुद्ध करना है, ये मूल बात थी। व्यवहार में ऐसा करना है, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्य योजन सुखों वाय दिवा दुखम सहयोगी परमो मत। वो परम योगी माना गया, नारायण 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 नारायण
सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम
सीताराम सीताराम
नारायण 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 नारायण
राम। नीति भाद्रपद शुक्ल दशमी रविवार विक्रम संवत 2046 श्री कृष्ण संवत 5215 तदनुसार दिनांक 10 सितंबर 1989 को प्रातःकालीन 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर धोरा पर और प्रातः 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान धीना सर बीकानेर में परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ये दोनों प्रवचन हुए। राम।